राम 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 नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कल की कथा में महाराज युधिष्ठिर से आज्ञा लेकर अर्जुन युद्ध करने के लिए कर्ण को मारने की प्रतिज्ञा करके रवाना हुए थे। खूब घमासान युद्ध हुआ और उस युद्ध में भीमसेन ने दुशासन का जो वध किया था वो वध ऐसा हुआ कि आज तक किसी योद्धा का कुरुक्षेत्र में नहीं हुआ, बाणों से मार दिया। परंतु आज तो और ही बात थी। और भीमसेन का वो जो दृश्य था वो एकदम राक्षस जैसा था। भीमसेन ने दुशासन को मारते समय एक एक को ललकारा और दुशासन से भी कहा, दुशासन तूने दुर्योधन के कहने से द्रौपदी को घसीटते हुए लाकर के अपमानित किया, दुर्योधन तेरे काम आया क्या? कर्ण तेरे काम आया क्या? मनुष्य कर्म करता है, दूसरों के भरोसे भोगना पड़ता है स्वयं को अकेले के। खूब बुरी तरह से फटकारा था उसको। भगवान कृष्ण और अर्जुन भी एकदम स्तब्ध रह गए। पर वाह भीम, खून हाथ में सने हुए भगवान के पास आकर के बोला, मैंने आज दुशासन को मार दिया है। भगवान कुछ नहीं बोले, देखते रहे उसको। अंदर से भगवान बड़े प्रसन्न थे। इधर देवता वगैरह सब आए ही, ब्रह्मा वगैरह, और उन्होंने उस समय यही बता दिया कि हम सब की यही इच्छा है कि अर्जुन आज विजयी बने। सब तैयारी हो गई, अब अर्जुन वहां से विदा होते हैं। जिस समय भगवान श्री कृष्ण अपने रथ में अर्जुन को बैठाकर वहां से विदा होते हैं, उस समय अर्जुन का रथ बड़ा देदीप्यमान, ध्वजा की शोभा बड़ी निराली, और ध्वजा पर बैठा हुआ बानर बहुत जोर से गर्जना कर रहा है। वह अपने दाढ़ों से सबको डरा रहा है। उस बंदर की ओर देखना ही सबके लिए बड़ा मुश्किल हो रहा है। भगवान कृष्ण ने अपने रथ को आगे बढ़ाया, उधर कर्ण ने भी अपने रथ को आगे बढ़वाया शल्य को कहकर। दोनों रथ पास में आए तो भगवान कृष्ण ने शल्य को खूब गौर से देखा, आंखें फाड़ते रहे। भगवान पहले आंख किसकी बंद हुई? शल्य की। भगवान यू आंख निकालते रहे, शल्य देखता रहा और अंत उसकी आंख बंद हो गई। शल्य ने भी उनकी ओर उसी दृष्टि से देखा, किंतु इसमें विजय कृष्ण की हुई, शल्य की पलकें झप गईं। इसी प्रकार कुंती नंदन धनंजय ने भी कर्ण को खूब आंख फाड़ के देखा, क्रोध में भरा हुआ देखा। देखता गया, देखता गया, देखता गया, अंत में कर्ण परास्त हो गया। कर्ण आंख बंद कर ली। यह एक तरह से अर्जुन की विजय का शुभ संकेत था। थोड़ी देर के बाद कर्ण ने शल्य से हंसकर के पूछा, शल्य यदि कदाचित इस संग्राम में अर्जुन मुझे मार डाले तो तुम क्या करोगे? सच सच बताना। शल्य ने कहा, कर्ण यदि वे आज तुझे मार डालेंगे तो मैं कृष्ण तथा अर्जुन दोनों को मौत के घाट उतार दूंगा। इधर अर्जुन ने भी कृष्ण से पूछा, देखो इन्होंने जो आपस में पूछा है उसका अर्जुन को मतलब नहीं, और अर्जुन जो पूछ रहे हैं उसका उनको कोई मतलब नहीं, कोई सुनाई नहीं दे रहा है। इधर अर्जुन ने भी पूछा कृष्ण से हंस करके, कि केशव यदि आज कर्ण मुझे मार दे तो फिर आप क्या करोगे। तब हंस करके भगवान कृष्ण कहने लगे, पार्थ क्या यह कभी सच हो सकता है? कदाचित सूर्य अपने स्थान से गिर जाए, समुद्र सूख जाए, आग में से गर्मी निकल जाए, हिमालय में से आग की लपटें निकल जाए, आग शीतलता स्वीकार कर ली, किंतु कर्ण तुम्हें मार डाले ये कदापि संभव नहीं है। और यदि तू प्रश्न करता है तो इसके उत्तर में ये कहता हूं कि संसार उलट जाएगा और मैं अपनी भुजाओं से कर्ण और शल्य को मसल दूंगा। भगवान की बात सुनकर अर्जुन हंस पड़े और कहने लगे, जनार्दन ये शल्य और कर्ण तो मेरे हिस्से में ही रहने दो, अब आप देखिएगा कि आपकी कृपा का क्या प्रभाव पड़ता है। मैं छत्र कवच शक्ति धनुष बाण रथ घोड़े राजा शल्य सहित कर्ण को अपने बाणों से टुकड़े टुकड़े कर डालूंगा। आज सूत पुत्र की स्त्रियों के विधवा होने का और विधवा होकर रोने का समय आ गया है, आज वे अवश्य विधवा बनेंगी और कर्ण की पत्नियां रोएंगी। इस अदूरदर्शी मूर्ख ने द्रौपदी की सभा में आई देख बारंबार उस पर आक्षेप किया। मुझे कई बार विचार आता है कृष्ण, आखिर कर्ण को दुर्योधन के इतने पक्ष की क्या आवश्यकता थी? पक्ष तो और भी लोगों ने लिया है, पर वे द्रौपदी का इस प्रकार से किसी ने अपमान नहीं किया, इसने द्रौपदी का अपमान करके क्या लाभ लिया? हम लोगों की खिल्लियां उड़ाई, अरे कर्ण तुम्हें क्या मतलब? हमारे घर में हमारी लड़ाई थी, आज उन सब बातों को याद कर इसको रौंद डालूंगा। ध्यान से सुनना। संजय कहते हैं कि महाराज धृतराष्ट्र सावधानी से सुनिए, तदनंतर दुर्योधन कृतवर्मा शकुनी कृपाचार्य और कर्ण ये पांच महारथी कृष्ण और अर्जुन पर एक साथ प्राणांतकारी बाणों का प्रहार करने लगे। ये सब देखकर धनंजय ने उनके धनुष बाण तरकस घोड़े हाथी रथ सारथी आदि को ऐसी शीघ्रता से नष्ट किया कि वहां सूत पुत्र को 12 बाणों से निशाना बना दिया। सैकड़ों रथी सैकड़ों हाथी सवार सैकड़ों पैदल सब नष्ट होते चले गए, परंतु अर्जुन अपने बाणों तथा क्षौरव की मार से उत्तम उत्तम अस्त्रों तथा और बाणों से उनका मस्तकों को बहुत काट काट के ढेर लगा दिया। हाथी घोड़े रथों का भी वहां पर ढेर लगा दिया। ये सब देख आकाश में देवताओं ने दुंद भी बजाई, सभी अर्जुन को धन्यवाद देने लगे, साथ ही वहां फूलों की वर्षा होने लगी। उस समय में सावधानी से ये सुनना है, उस समय में अश्वत्थामा दौड़ करके दुर्योधन के पास आया और बड़ी मित्रता के साथ उसका हाथ अपने हाथ में लेकर सांत्वना देते हुए बोला, दुर्योधन अब प्रसन्न होकर के पांडवों से संधि कर लो, विरोध से कोई लाभ नहीं है, आपस के इस झगड़े को धिक्कार है। हमारे गुरुदेव अस्त्र विद्या के महान पंडित थे, किंतु वे भी इस युद्ध में मारे गए। यही दशा भीष्मादि महारथियों की हुई है। मैं और मामा कृपाचार्य तो अवध्य हैं, इसलिए अब तक बचे हुए हैं, अतः अब तुम पांडवों से मिलकर चिरकाल तक राज्य शासन करो, मेरे मना करने से अर्जुन शांत हो जाएंगे, श्री कृष्ण भी विरोध नहीं चाहते हैं। तुम कृष्ण का हृदय देखो, उनका हृदय अपार करुणा से भरा हुआ है। दुर्योधन युधिष्ठिर तो सभी प्राणियों के हित में लगे रहते हैं, अतः वे भी मान लेंगे। बाकी भीमसेन नकुल और सहदेव ये धर्मराज से विपरीत नहीं जा सकते, वे धर्मराज के अधीन हैं, तुम्हारे साथ पांडवों की संधि हो जाने पर सारी प्रजा का कल्याण होगा। ये बिचारे राजा लोग, कोई छोटी राजधानी का है, कोई बड़ी राजधानी का है, इनका परिवार है, इनके पास भी अपना सुख सुविधा का सामान है, इनके भी बाल बच्चे हैं, ये सब यहां मर जाएंगे, सेना ले लेकर के सब आ गए, कितने रजवाड़े खराब हो जाएंगे, कितनी प्रजा हाई त्राई करेगी, इसलिए तुम युद्ध को रोक दो, तुम्हारी अनुमति लेकर सब लोग अपने देश जाएंगे, उस समय तुमको ये गरीब राजा लोग बहुत बहुत धन्यवाद देंगे, आशीर्वाद देंगे, उनके आशीर्वाद से तुम्हारा जीवन शांति में व्यतीत होगा। दुर्योधन, यदि मेरी बात नहीं सुनोगे तो तुम शत्रुओं के हाथ से मारे जाओगे, तुम्हें उस दिन बहुत पश्चाताप होगा, तुम कहोगे कि हमको शांति के जिन जिन लोगों ने समझाया था बहुत ठीक कहा, आज तुमने और सारे संसार ने देख लिया ना, अकेले अर्जुन का पराक्रम, कितनी रुंड मुंडियां यहां इकट्ठी हो गई, कितने हाथी, कितने महावत, कितने रथ, कितने पैदल, क्या दशा हो रही है, आज इंद्र, यमराज, वरुण और कुबेर भी इनको रोकना चाहे रुकने वाला नहीं है, अर्जुन गुणों में मुझसे भी बढ़कर है, ये मैं हृदय से मानता हूं, तो भी मुझे विश्वास है, मैं अर्जुन से कहूं कि अर्जुन तुम मेरे गुरु भाई हो, तुम मेरे पिता के सबसे बड़े कृपापात्र शिष्य हो, मेरी एक बात माननी पड़ेगी, वो मेरी बात को टालेंगे नहीं और वो तुम्हारे अनुकूल रहेंगे, कितना अच्छा हो, इन पांडवों के सहारे से तुम अपना राज्य करो और वे अपना राज्य करें, तुम पर आफत आए तो पांडव तुम्हारी सहायता करें, पांडव तुमसे अलग नहीं है, अपनी घनिष्ठ मित्रता के कारण से मैं तुमसे प्रस्ताव कर रहा हूं, जब तुम इसे प्रेम पूर्वक स्वीकार कर लोगे तो कर्ण को भी मैं युद्ध में रोक दूंगा, तुम और कर्ण सदा साथ में बैठोगे, साथ रहोगे, और कभी ऐसा मौका हुआ तो तुम और कर्ण दोनों मिलकर पांडवों की सहायता करोगे और पांचों पांडव तुम्हारी और कर्ण की सहायता करेंगे। विद्वान लोग चार प्रकार के मित्र बताते हैं, एक मित्र तो स्वाभाविक होता है, दूसरा मित्र संधि करके बनाया हुआ मित्र होता है, तीसरा जो धन देकर अपनाया हुआ होता है, और चौथा भय के कारण से मित्र होता है। पांडवों के साथ तुम्हारी सब प्रकार की मित्रता संभव है। वीरवर, यदि तुम प्रसन्नता पूर्वक पांडवों से मित्रता स्वीकार कर लोगे तो तुम्हारा संसार में बहुत बड़ा कल्याण होगा और बहुत बड़ा यश फैलेगा। इस प्रकार जब अश्वत्थामा ने दुर्योधन से हित की बात कही तो अंदर से बहुत टूट चुका था और कहने लगा, मित्र तुम जो कुछ कहते हो सब ठीक तो है, किंतु इसके संबंध में मेरी कुछ और बात है। इस दुर्बुद्धि भीमसेन ने दुशासन को मार डालने के पश्चात कैसा रौद्र रूप बनाकर राक्षसी रूप से कितनी बड़ी धमकियां दी हैं और एक एक को चुनौती करके कहा है, वो मेरे हृदय से अभी भय दूर नहीं हुआ है। तुम चाहे कितनी कर लो, ये भीमसेन हमको छोड़ने वाला नहीं है, ये अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने वाला है, ऐसी दशा में कैसे संधि करूं। हे गुरुपुत्र, इस समय तुम्हें कर्ण से युद्ध बंद करने की बात नहीं कहनी चाहिए, क्योंकि अर्जुन आज युद्ध करते करते बहुत थक गया है और अब वो कर्ण के हाथ से मरने वाला है, विजय तो मेरे पक्ष में दौड़ी दौड़ी आ रही है। हे गुरुपुत्र, आपको इसमें कहां संशय लगता है? अश्वत्थामा से यूं कहकर दुर्योधन ने बड़ा अनुनय विनय किया ताकि अश्वत्थामा के हृदय पर यह असर न पड़े कि दुर्योधन ने मेरी बात नहीं मानी। इधर दुर्योधन ने अपने सैनिकों से कहा, अरे तुम लोग हाथों में बाण लिए चुपचाप क्यों बैठे हो, शत्रुओं पर धावा क्यों नहीं बोलते? इसी बीच श्वेत घोड़े वाले कर्ण और अर्जुन युद्ध के लिए आमने सामने डट गए। एक दूसरे के ऊपर खूब अस्त्रों शस्त्रों का प्रहार किया। दोनों के सारथी घोड़े शरीर बाणों से बिंद गए, खून की धारा बहने लगी। वे अपने वज्र के समान बाणों से इंद्र और वृत्रासुर के भांति एक दूसरे से लड़ रहे थे। इतने में ही कर्ण मतवाले हाथी के भांति अर्जुन को मारने की इच्छा से आगे बढ़ा। तब सोमको ने चिल्लाकर कहा, अर्जुन अब विलंब करना व्यर्थ है, कर्ण सामने है, इसे छेद डालो, इसका मस्तक उड़ा दो। इसी प्रकार कौरव सेना कहने लगी, कर्ण जाओ, सामने अर्जुन है, अर्जुन को मार डालो। पर यह कहना दोनों की तरफ से सुगम है, पर करना दोनों के लिए बड़ा कठिन था। पहले कर्ण ने अर्जुन को बीना और फिर अर्जुन ने इसकी कांखों के अंदर बाण मार मार करके और तेज धार वाले 10 सहायकों से कर्ण को चोट पहुंचाना चालू किया। गांडीव धनुष की प्रत्यंचा सुधार कर कर्ण पर नाराज नालीक वराह कर्ण तरह तरह के बाण लगाए, परंतु अर्जुन ने उन सब बाणों को अर्जुन जिन बाणों को छोड़ते थे कर्ण उन्हीं बाणों से उनको काट देते थे। अर्जुन ने आग्नेयास्त्र तो उसने जो है वारुणास्त्र, अर्जुन ने फिर वायव्यास्त्र तो उसने दूसरा अस्त्र छोड़ा, ऐसे करके एक दूसरे के ऊपर प्रहार किया। अर्जुन ने फिर ऐन्द्रास्त्र का प्रयोग किया तो इसने भार्गवास्त्र का प्रयोग किया, अर्जुन ने महेंद्रास्त्र का प्रयोग किया। इस प्रकार से एक दूसरे पर खूब शस्त्रों का प्रहार होता हुआ करते हुए आपस में खूब युद्ध करने लगे। बीच बीच में भीमसेन क्रोध में भरकर कहते, अर्जुन धर्म की अवहेलना करने वाले इस पापी कर्ण ने आज तुम्हारे सामने पांचालों की प्रधान प्रधान वीरों को मार डाला और तुम्हें क्रोध नहीं आता? तुम्हें तो कालिकेय नामक दानव को भी तुमने परास्त कर दिया था, साक्षात महादेव जी से तुम्हारी हाथापाई हो चुकी है, फिर एक मामूली सूत पुत्र जिसने तुम्हें पहले ही बाणों से मारकर कैसे बीन डाला, तुम्हारे चलाए हुए बाणों को इसने नष्ट कर दिया, ये क्या बात है? मुझे बहुत आश्चर्य हो रहा है। अरे इसने सभा में द्रौपदी को जो कष्टकारक वचन कहे वो तुम्हारे कान में नहीं गूंजते? याद करो, इस पापी ने निर्भय होकर जो हम लोगों को नपुंसक कहा और भी तीखी तीखी कठोर बातें सुनाई, वो याद नहीं आ रही? इन सारी बातों को ध्यान में रखो और अब कर्ण के ऊपर बाण चलाओ। तुम इतनी लापरवाही क्यों कर रहे हो? ये लापरवाही का समय नहीं है। कृष्ण ने भी अर्जुन से कहा, वीरवर क्या बात है, तुमने जितने बार प्रहार किए कर्ण ने प्रत्येक बार तुम्हारे अस्त्र को काट दिया, आज क्या मोह हो रहा है तुमको? क्या हमारी बात को तुम ध्यान से नहीं सुनते? क्या ये कर्ण तुमसे ज्यादा शूरवीर हो गया? ये तुम्हारे शत्रु कौरव कितने हर्षित नाच रहे हैं और तुम धैर्य से इन बातों को देख रहे हो, इसलिए आज कर्ण को नष्ट करने का समय है। संजय कहते हैं, भीमसेन तथा कृष्ण के इस प्रकार कहने पर अर्जुन ने सूत पुत्र का पूर्ण रूप से वध करने का विचार किया, साथ ही भूमि पर आने के प्रयोजन का ध्यान में रखकर कृष्ण से कहा, भगवान अब मैं संसार का कल्याण और सूत पुत्र का वध करने के लिए महान भयंकर अस्त्र प्रकट करता हूं। इसके लिए आप ब्रह्मा जी, शंकर, समस्त देवता, संपूर्ण ब्रह्म वेत्ता मुझे आज्ञा दें। ऐसा कहकर के सभ्य साची अर्जुन ने ब्रह्मा जी को नमस्कार किया और जिसका मन ही मन प्रयोग होता है उस ब्रह्मास्त्र को प्रकट किया, किंतु कर्ण ने अपने बाणों की बौछार से उस ब्रह्मास्त्र को नष्ट कर डाला। यदेक भीमसेन बड़े क्रोध में तमतमा उठे, सत्य प्रतिज्ञ अर्जुन से कहा, सभ्य साचिन तुम्हारे समान ब्रह्मास्त्र का ज्ञाता कोई नहीं और उस ब्रह्मास्त्र की ये दशा, कर्ण ने उसको काट दिया, छोड़ो ब्रह्मास्त्र, कोई और अस्त्र का संधान करो। जब तक तुम कर्ण को नहीं मारोगे तब तक हमारा क्रोध शांत होने वाला नहीं है। यह सुनकर अर्जुन ने दूसरे अस्त्र को धनुष पर रखा, प्रत्यंचा पर चढ़ाया और बाणों की वर्षा करने लगे। अर्जुन चारों दिशाएं बाणों से आच्छादित हो गई, कोना कोना भर गया। केवल बाण ही नहीं, भयंकर त्रिशूल भी उस बाण से निकले। फरसे, चक्र, नाराज सब जगह वही वो छा गए। किसी का सिर कटा तो किसी का धड़ अलग हो गया, तो किसी का पैर कोई चंपत हो गया, किसकी दाहिनी भुजा, किसी की बाईं भुजा। इस प्रकार किरीटधारी अर्जुन ने शत्रु पक्ष के मुख्य मुख्य योद्धाओं का संहार किया। दूसरी ओर कर्ण ने भी अर्जुन पर हजारों बाणों की वर्षा की। भीमसेन, श्री कृष्ण और अर्जुन तीनों को लक्ष्य करके वो खूब जोर से गर्जना पूर्वक बाणों का प्रहार करने लगा। अर्जुन ने पुनः 18 बाण चलाए और एक बाण से कर्ण की ध्वजा छेद डाली, चार बाणों से राजा शल्य को घायल कर दिया और तीन से कर्ण घायल हो गए। शेष 10 बाणों का प्रहार राजकुमार सभापति पर हुआ। 2 बाणों से राजकुमार के ध्वजा धनुष कट गए और उसके बाद उसका मस्तक भी कट गया। मृत्यु को प्राप्त होकर वह राजकुमार रथ से नीचे गिर पड़ा। फिर अर्जुन ने अपने शस्त्र संभाले और शत्रु सेना का खूब संहार करने लगा। कौरव चिल्लाए, कर्ण तुम जल्दी पांडु पुत्र अर्जुन को मार डालो, नहीं तो देखो हमारी सेना का कैसे संहार कर रहा है, अब बची कुची सेना भी मर जाएगी। उनकी प्रेरणा से कर्ण ने पूरी शक्ति लगाकर लगातार बाणों की वर्षा की। पांडव और पांचाल सैनिकों का नाश होने लगा। कर्ण और अर्जुन दोनों ही अस्त्र विद्या के ज्ञाता थे, इसलिए बड़े बड़े अस्त्रों का प्रयोग करके वे अपने अपने शत्रुओं की सेना का संहार करने लगे। इतने में ही राजा युधिष्ठिर मंत्र और औषधियों के बल से पूर्ण स्वस्थ होकर कर्ण और अर्जुन का युद्ध देखने के लिए वहां आए। हितैषी वैद्यों ने उसके शरीर से बाण निकालकर घाव अच्छे कर दिए थे। धर्मराज को संग्राम भूमि में देख करके पांडव सेना को बड़ी प्रसन्नता हुई। उस समय सूत पुत्र कर्ण ने अर्जुन को क्षुद्रक नाम से बाणों से प्रहार किया। अर्जुन ने भी हंसते हंसते उसके ऊपर कई बाण डाले। कर्ण के शरीर में बहुत से घाव हो गए, वो खून से लथपथ हो गया, पीड़ा से व्याकुल हो गया, परंतु किसी प्रकार उसने युद्ध बंद नहीं किया और कौरवों ने उसे अकेला ही छोड़ दिया। सब कौरव सेना इधर उधर भाग गई, क्योंकि कर्ण की ये दशा है। राजन, तदनंतर भागे हुए कौरव सैनिक धनुष से छोड़े हुए बाण जहां तक पहुंचता है वहां तक खड़े हो गए और अर्जुन का और कर्ण का युद्ध देखने लगे। अब अर्जुन प्रचंड रूप धारण करके कौरवों को भस्म करने लगे। यह देख कर्ण ने अथर्वण अस्त्र का उपयोग किया। यह शत्रुनाशक अस्त्र उसे परशुराम जी ने दिया था। उसके द्वारा कर्ण ने अर्जुन के अस्त्र को शांत कर दिया और उन्हें तेज किए हुए सहायकों से बींद डाला। अर्जुन ने इतनी बाण बरसा कि आकाश ढक गया कि एक बार कर्ण को यह समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कौन से बाण का प्रयोग करूं। अब ध्यान से, बहुत ध्यान से, इसी समय पाताल लोक में रहने वाला अश्वसेन नाम का एक नाग जो अर्जुन से बड़ा बैर रखता था, उसको पता चला कि इस समय कर्ण और अर्जुन का युद्ध हो रहा है, तो वो नाग अपने लोक से बड़े वेग से उछलकर वह युद्ध भूमि में आया और देखा कि बहुत घमासान युद्ध में अब अर्जुन का मुझे बदला लेना है। ऐसा सोचकर वह बाण का रूप बनाकर कर्ण की तरकस में चला गया। उस युद्ध में जब कर्ण किसी तरह अर्जुन से बढ़कर पराक्रम नहीं दिखा सका, तब अर्जुन के पास एक पहले से सर्पमुख नाम का बाण था उसी तरकस में। अब अर्जुन को यह पता नहीं कि मेरे यहां अश्वसेन नाम का नाग आया है बाण बनकर के, तो पता था नहीं, और उसको ये पता है कि मेरे पास एक सर्पमुख नाम का नाग है, वो बाण है, तो वो बाण बड़ा भयंकर था। आग में तपाए हुए होने के कारण से देदीप्यमान रहता था, इसलिए उसको सर्प मुख बोलते थे। कर्ण ने अर्जुन को ही मारने के लिए बड़े यत्न से उसको सुरक्षित रखा था, नित्य उसकी पूजा करता था, सोने के तरकस में चंदन के चूर्ण के अंदर उसको रखता था। उसी बाण को उसने धनुष पर चढ़ाया और अर्जुन को ताक करके निशाना ठीक लगाया, परंतु उस बाण के धोखे में अश्वसेन नाम का नाग वो उसके धनुष पर चढ़ गया। अर्जुन को पता नहीं, ये कर्ण को पता नहीं। इधर इंद्रादि लोकपाल घबरा गए, अब क्या करें। उस समय मद्रराज शल्य ने जब उस भयंकर बाण को धनुष पर चढ़ाया हुआ देखा तो कहा, कर्ण तुम्हारा ये बाण शत्रु के कंठ में नहीं लगेगा, तुम्हारा निशाना टेढ़ा लग रहा है, जरा सोच समझ करके दोबारा निशाना लगाओ ताकि अर्जुन का मस्तक कट सके। कर्ण ने क्रोध भरी दृष्टि से शल्य को कहा, शल्य कर्ण दो बार निशाना नहीं साधता है, मेरे जैसे वीर कपटपूर्वक युद्ध नहीं करते हैं, इसलिए जो मैंने निशाना लगा दिया। यह कहकर कर्ण ने जिसकी वर्षों से पूजा की थी उस बाण को शत्रु की ओर छोड़ दिया और उनका तिरस्कार करते हुए उच्च स्वर से कहा, अर्जुन बस तुम्हारा जीवन समाप्त, ये बाण तुमसे जो ही स्पर्श करेगा तुम मर जाओगे। कर्ण के धनुष से छूटा हुआ वो बाण अंतरिक्ष में पहुंचते ही बहुत बड़ी अग्नि के रूप में प्रकट हो गया। उसे बड़े वेग से आते देख भगवान कृष्ण ने खेल सा करते हुए अपने रथ को तुरंत पैरों से दबाया। भार के पड़ने से रथ के पहिए कुछ जमीन में धंस गए, साथ ही सोने के गहनों से सजे हुए घोड़े थे वो पृथ्वी पर टिक गए और झुक गए। कृष्ण का ये कौशल देख आकाश में जय जयकार होने लगी, दिव्य वाणी सुनाई देने लगी, फूलों की वर्षा होने लगी। कर्ण का छोड़ा हुआ वह बाण रथ नीचा हो जाने के कारण अर्जुन के कंठ में तो लगा नहीं और वो सीधा उसके मुकुट में लगा और वह मस्तक से नीचे गिर पड़ा, मुकुट नीचे गिर पड़ा। अर्जुन का वो मुकुट पृथ्वी अंतरिक्ष स्वर्ग और वरुण लोक में बड़ा विख्यात था। सूर्य चंद्रमा और अग्नि के प्रभाव के समान चमकने वाला था। ब्रह्मा जी ने बड़े प्रयत्न और तपस्या से इंद्र के लिए तैयार किया था, इससे बड़ी मीठी सुगंध फैलती थी। अर्जुन ने दैत्यों को मारने की इच्छा से जब रण यात्रा की उस समय इंद्र ने प्रसन्न होकर अर्जुन को ये मुकुट पहनाया था, तभी से ये मुकुट अर्जुन अपने पास रखते थे। वही मुकुट कर्ण के साथ युद्ध करते समय सर्प की विषाग्नि से जीर्ण शीर्ण होकर जलकर राख हो गया, इससे अर्जुन को तनिक भी घबराहट नहीं हुई और वे अपने सिर के बालों पर सफेद साफा पहनकर धैर्य पूर्वक डटे रहे और मौत के मुख से बच गए, क्योंकि सर्पमुख बाण के रूप में अर्जुन के साथ बैर रखने वाला वो तक्षक का पुत्र था, अश्वसेन नाम का नाग। किरीट पर आघात करके वह पुनः तरकस में घुसना चाहता था, वही बाण अश्वसेन नाग घुसना चाहता था। कर्ण के पूछने पर कहने लगा, कर्ण तुमने अच्छी तरह सोच विचार कर बाण नहीं छोड़ा, इसलिए मैं अर्जुन का मस्तक नहीं उड़ा सका। अब जरा निशाना साध कर चलाओ, फिर मैं अपने और तुम्हारे इस शत्रु का सिर भी काट डालता हूं। ये तेरा भी शत्रु है अर्जुन, मेरा भी शत्रु है, तुम दोबारा मुझे लगाओ, निशाना लगा के लगाना। कर्ण ने पूछा, तुम कौन हो? कर्ण तुम नहीं जानते, मैं अश्वसेन नाम का नाग हूं। तुम्हारी अर्जुन के साथ क्या दुश्मनी है? अर्जुन ने खांडव वन में मेरी माता का वध करके बहुत बड़ा अपराध किया, इससे मेरी उसकी दुश्मनी हो गई। यदि स्वयं वज्रधारी इंद्र उसकी रक्षा करने आवे तो भी उसे यमराज के घर जाना पड़ेगा। कर्ण बोला, नाग आज कर्ण दूसरे के बल का आश्रय लेकर विजयी होना नहीं चाहता। यदि तुम्हारा संधान करने से मैं सैकड़ों अर्जुनों को मार भी सकूं तो भी मैं एक बाण को दो बार संधान नहीं कर सकता। मेरे पास सर्प बाण है, उत्तम प्रयत्न है, मन में रोष है, तन में बल है, किसी प्रकार मुझे तुम्हारी सहायता नहीं लेनी है। और यदि मैंने तुम्हारी सहायता से अर्जुन का वध भी कर दिया तो कर्ण ने वध किया ये बात नहीं होगी, अश्व से नाग ने मारा ये बात होगी, ये कलंक मैं अपने में नहीं लेना चाहता। कर्ण मेरे सामने क्या है, मैं कर्ण को मार डालूंगा, जाओ तुम अपना रास्ता ले। कर्ण की ये बात नागराज से नहीं सही गई। वह स्वयं ही अर्जुन का वध करने के लिए अपना भयंकर रूप प्रकट करके उनकी ओर दौड़ा। यदि कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अर्जुन ये खांडव वन वाला सर्प है। कौन, कैसा सर्प है केशव? अरे खांडव वन में जब तुम अग्निदेव को तृप्त कर रहे थे उस समय इसकी माता ने पुत्र का प्राण बचाने के लिए इसे निगल लिया। इस प्रकार मां के पेट में अपने शरीर को छिपाकर वह दुबक कर बैठ गया और तुमने आकाश में बाण लगाया तो इसकी मां तो मर गई और इसमें से निकल करके तुम्हारे वैर को याद करके मौका देख रहा था, आज इसको मौका मिला है। अच्छा, अर्जुन ने आकाश में तिरछी नजर डलाई और एक बाण लिया और उससे उस अश्व से नाग के 6 टुकड़े हो गए। उसके बाद भगवान ने पृथ्वी में धसे हुए रथ को अपने दोनों भुजाओं से ऊपर निकाल लिया। उस समय कर्ण ने अर्जुन को 12 तथा कृष्ण को 12 तथा अर्जुन को 90 बाणों से घायल किया। फिर एक भयंकर बाण से अर्जुन को बींद कर वे बड़े जोर से हंसने लगा। संजय कहते हैं, महाराज कर्ण ने हंसकर जो अपनी प्रसन्नता प्रकट की थी वो अर्जुन से सही नहीं गई। उन्होंने सैकड़ों बाण लेकर मर्म स्थानों को घायल करना चालू किया। उसके मस्तक पर एक सुंदर मुकुट था कर्ण के, उसमें उत्तम मणि हीरे सुवर्ण जड़े हुए थे, कानों में सुंदर कुंडल शोभा पा रहे थे। अर्जुन के बाणों की चोट खाकर कर्ण का वह मुकुट कुंडलों के साथ जमीन पर गिर पड़ा। उसने जो कवच पहन रखा था बड़ा भारी कीमती और चमकदार था, उस कवच को भी कारीगरों ने बहुत दिनों में बनाया था। अर्जुन ने एक ही क्षण में बाण मारकर उस कवच के टुकड़े टुकड़े कर दिए। फिर उसके बाद बाण ही बाण चलाते रहे। अर्जुन को भी पीड़ा होती थी, कर्ण को भी पीड़ा होती थी, पर दोनों का किसी प्रकार मनोबल नहीं टूटा था। बार बार चोट खाते 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 अब कर्ण अत्यंत आहत होने लगा। उसकी मुट्ठी खुल गई, धनुष और तरकस गिर गए और वह रथ पर ही गिरकर बेहोश हो गया। अर्जुन श्रेष्ठ थे, श्रेष्ठ पुरुषों के व्रत का पालन करते थे। उन्होंने जब कर्ण को संकट में पड़ा देखा तो उस समय उन्होंने बाण चलाना बंद किया कि एक बार संकट से उबर जाए। भगवान कृष्ण कहने लगे, अर्जुन ये लापरवाही कैसी है? बुद्धिमान पुरुष तो संकट में पड़े हुए शत्रु को मारकर विशेष धर्म का पालन करते हैं, तुम भी इसका नाश करने के लिए शीघ्रता करो। तुम इसको पहले शक्तिशाली बनाओगे और फिर मार खाओगे और फिर जीतने की आशा करोगे, ये बुद्धिमानी नहीं है, चलो इस पर आक्रमण करो। तब अर्जुन ने कहा, बहुत अच्छा भगवान, जो आपकी आज्ञा है वैसा ही करूंगा। कृष्ण का सम्मान करते हुए शीघ्रता से उसने उत्तम बाणों से कर्ण को बींधना प्रारंभ किया। उसने वत्सदंत नाम वाले सहायकों से कर्ण को और उसके रथ और घोड़ों को सहित ढक दिया, पूरी शक्ति लगाकर चारों दिशाओं को बाणों से आच्छादित कर दिया। इधर बेहोशी के बाद जब कर्ण को चेत हुआ तो उसने बहुत ध्यान से सुना, धैर्य धारण करके अर्जुन के 10 और कृष्ण के 6 बाण लगाए। तब अर्जुन ने कर्ण पर एक भयंकर बाण छोड़ने का विचार किया। इधर उसके वध का समय भी आ गया था। उस समय काल ने अदृश्य होकर कर्ण को ब्राह्मण के कोपवश दिए हुए शाप की याद दिलाई और उसके वध की सूचना देते हुए कहा, कर्ण अब ये पृथ्वी तुम्हारे पहिए को निगलना चाहती है। कर्ण अब तुम्हारे जीने का समय समाप्त होने जा रहा है। कर्ण घबराए। इसी समय परशुराम जी के द्वारा मिले हुए ब्रह्मास्त्र की याद उसके मन से निकल गई। उधर ब्राह्मण के शाप के अनुसार उसके रथ के बाएं पहिए को पृथ्वी निगलने लगी, अंदर जाने लगा, रथ डगमगाने लगा और एक पहिया पूरा जमीन में धस गया। इस प्रकार जब जमीन में पहिया धस गया, परशुराम का दिया हुआ ब्रह्मास्त्र भूल गया और घोर सर्पमुख बाण भी कट गया, तब अर्जुन बहुत घबराया। एक साथ इतने संकटों को न सह सकने के कारण कर्ण बहुत बड़े विषाद में डूब गया और हाथ हिला हिलाकर धर्म की निंदा करने लगा और कहने लगा, ये धर्मवेत्ता लोग सदा कहा करते हैं कि धर्म मनुष्य की रक्षा करता है, काय की रक्षा करता है। मैं भी शास्त्र में जैसा सुना, जैसी मेरी शक्ति उसके अनुसार मैंने धर्म का पालन किया, किंतु वो धर्म ही आज मुझे मार रहा है। मेरी समझ में नहीं आता कि धर्म भी अपने भक्तों की सदा रक्षा नहीं करता है, कौन करेगा। जब ये कर्ण बातें कह रहा था उस समय उसके घोड़े लड़खड़ा रहे थे क्योंकि रथ का पहिया धंसा हुआ जमीन में। वह स्वयं भी अर्जुन के बाणों की मार से विचलित हो गया, मर्म स्थानों पर चोट लगने से शिथिल हो गया, अब काम करने की शक्ति नहीं रही। वह रह रहकर धर्म की निंदा करने लगा। इसके बाद उसने कृष्ण के हाथ में 3 अर्जुन के 7 भयंकर बाण छोड़े। अर्जुन ने भी अपने खूब बाण छोड़े। उससे कर्ण कांप उठा और ब्रह्मास्त्र को यूं याद करे, पर ब्रह्मास्त्र को तो भूल गया था। अर्जुन ने अपने हाथ में शस्त्र लिए, शस्त्रों का आदर करते वो प्रहार करने लगा। भगवान कहने लगे, पार्थ इस राधा नंदन कर्ण तुम्हारे बाणों को नष्ट कर रहा है, तुम किस बात की प्रतीक्षा कर रहे हो, उत्तम अस्त्र क्यों नहीं उठाते। अर्जुन सावधान हो गए, ब्रह्मास्त्र को चढ़ाया और समस्त दिशाओं को आच्छादित कर दिया और कर्ण को मारना चालू किया। कर्ण ने तेज किए हुए बाणों से उसके धनुष की डोरी काट दी। अर्जुन ने दूसरी डोरी चढ़ाई किंतु उसको भी काट दिया। तीसरी, चौथी, पांचवी, ऐसे वो डोरी को काटता गया। अर्जुन के पास की डोरियों की कमी थोड़ी ही थी। इसके बाद इस बात को कर्ण जानता नहीं था। अब उसने नई डोरी चढ़ाई और उसे अभिमंत्रित करके कर्ण पर बाणों की झड़ी लगाई। तब कर्ण अपने अस्त्रों से अर्जुन के अस्त्रों को काटने लगा। इधर कृष्ण ने जब अर्जुन को कर्ण के बाणों से पीड़ित होता हुआ देखा तो अर्जुन उठाओ अस्त्र, करो निकट से प्रहार। तब उसने मंत्र पढ़कर रौद्रास्त्र को धनुष पर चढ़ाया, कर्ण पर छोड़ा। इतने में कर्ण के रथ का पहिया पृथ्वी में और ज्यादा धंस गया। यह देख वह तुरंत रथ से उतरा और दोनों भुजाओं से पहिये को पकड़ करके उठाने लगा। ध्यान से सुनिएगा, वो उसको पकड़ करके उठाना लगा तो 7 द्वीप वाली पृथ्वी जिसके ऊपर अनेक पर्वत और वन और इधर समुद्र, 4 अंगुल पृथ्वी ऊपर आ गई। परंतु रथ है, रथ का पहिया वो जमीन से नहीं निकला। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, असहाय हो गया। अर्जुन की ओर देखकर बोला, कर्ण एक कुंती नंदन, कितना अच्छा संबोधन दिया है, कर्ण ने, एक कुंती नंदन तुम बड़े धनुर्धर हो, तुम बड़े धर्म के ज्ञाता हो, जब तक मैं अपना ये फंसा हुआ पहिया ऊपर निकाल न दूं तब तक तुम क्षण भर के लिए ठहर जाओ, तुम्हें नीच पुरुषों के मार्ग पर नहीं चलना चाहिए, तुम्हारे लिए तो श्रेष्ठ आचरण यही है कि तुम थोड़ी देर मुझे समय दो, जिसके सिर के बाल बिखर गए हों, जो पीठ दिखाकर भाग जाता हो, जो ब्राह्मण हो, हाथ जोड़ रहा हो, शरण में आया हुआ हो, प्राण रक्षा के लिए प्रार्थना कर रहा हो, जिसने अपने हथियार रख दिए हों, जिसके पास बाण न हो, जिसका कवच कट गया हो, अस्त्र शस्त्र गिर गया हो या टूट गया हो, ऐसे योद्धा पर उत्तम व्रत का आचरण करने वाले तुम्हारे जैसे शूरवीर शस्त्र नहीं चलाते अर्जुन, तुम भी संसार के बहुत बड़े वीर और सदाचारी हो, तुम युद्ध धर्म को जानते हो, तुमने उपनिषदों के गहन ज्ञान में डुबकी लगाई है, तुम दिव्यास्त्रों को जानते हो, उदार हृदय वाले हो, युद्ध में कार्तवीर्य को भी मात करने वाले हो, महाबाहो जब तक मैं इस फंसे हुए चक्के को ऊपर उठाने लूं तब तक थोड़ी देर के लिए ठहर जाओ, तुम रथ पर हो, मैं जमीन पर, साथ ही मैं बहुत घबराया हुआ हूं, इसलिए धर्म ये कहता है कि मेरे ऊपर प्रहार करना उचित नहीं है। कर्ण की बात सुनकर रथ पर बैठे हुए भगवान बहुत जोर से अट्टहास करते हुए कर्ण से कहने लगे, वाह राधा नंदन, वाह सौभाग्य की बात है, आज तुमको धर्म याद आ गया। प्रायः देखने में आता है कि जब मनुष्य विपत्ति में फंसता है तब वो धर्म को चिल्लाता चिल्ला करके याद करता है, प्रारब्ध की निंदा करता है, अपने किए हुए कर्मों की नहीं अपने भाग्य को कोसता है। कर्ण, पांडवों के वनवास का 13वां वर्ष बीत जाने पर भी तुमने उनको राज्य नहीं दिया, उस समय तुम्हारा धर्म कहां चला गया था रे? तुम्हारी सलाह लेकर जब राजा दुर्योधन ने भीमसेन को जहर मिलाया हुआ भोजन कराया था और उन्हें सर्पों से डसवाया था, उस समय तुम्हारा धर्म कहां चला गया था रे? वारणावत नगर में लाक्षा भवन में भीतर सोए हुए पांडवों को जलाने का जब तुमने प्रबंध किया, उस समय तुम्हारा धर्म कहां चला गया था रे? भरी सभा के अंदर दुशासन के वश में पड़ी हुई रजस्वला द्रौपदी को लक्ष्य करके जब तुमने उपहास किया था, उस समय तुम्हारा धर्म कहां चला गया था रे? याद है ना? नहीं याद है तो याद करो। तुमने द्रौपदी से कहा था, कृष्णे पांडव तो नष्ट हो गए, सदा के लिए नरक में पड़ गए, अब तू किसी दूसरे पति को वरण कर लो। तुम्हारे शब्द थे ना कर्ण? यह कहकर तुम द्रौपदी की ओर आंख फाड़ फाड़ कर देख रहे थे, उस समय तुम्हारा धर्म कहां चला गया था? फिर राज्य के लोभ से तुमने शकुनी की सलाह लेकर जब पांडवों को दोबारा जुए के लिए बुलाया था, उस समय तुम्हारा धर्म कहां चला गया था? युद्ध में तुमने धर्म निभाया? अभिमन्यु बालक था, अकेला था, तो भी तुम अनेक महारथियों ने उसे शस्त्रहीन किया और उसके बाद तुम सबने एक साथ उसके ऊपर प्रहार किया, जब तुम्हारा धर्म कहां चला गया था रे? यदि उस समय यह धर्म नहीं था तो आज भी धर्म की दुहाई देकर अधिक बकवाद करने से कोई लाभ नहीं है कर्ण। इस समय यहां जितने ही धर्म क्यों न कर डालो, अब जीते जी तुम्हारा छुटकारा नहीं हो सकता। पुष्कर ने राजा नल को जुए में जीत लिया था, किंतु उन्होंने अपने ही पराक्रम से पुनः राज्य पाया और यश भी पाया। इसी प्रकार निर्लोभी पांडव भी अपनी भुजाओं के बल से शत्रुओं का संहार करके अपना राज्य प्राप्त करेंगे तथा इन महापुरुषों के हाथ से ही धृतराष्ट्र के सारे पुत्रों का नाश होगा। महाराज धृतराष्ट्र जी, भगवान वासुदेव के ऐसा कहने पर कर्ण का सिर लज्जा से नीचे झुक गया, कृष्ण को देख नहीं सका। उनको जवाब तो क्या देता, उसकी वाणी वहीं बंद हो गई। तदनंतर कर्ण धनुष उठाकर पृथ्वी पर खड़ा खड़ा ही एकदम रथ को छोड़ करके अब जैसा भी उससे युद्ध हुआ वो युद्ध करता गया। भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा, तुम कर्ण को दिव्यास्त्र से घायल करके मारो, छोटे मोटे अस्त्रों से मरने वाला नहीं है। भगवान के ऐसा कहने पर अर्जुन को कर्ण के अत्याचारों का स्मरण हो आया। वो द्रौपदी की सभा में कहे हुए शब्द उसके कान में गूंजने लगे। अर्जुन का चेहरा क्रोध से लाल हो गया, आंखों से मानो खून गिरने वाला हो, ऐसी अद्भुत उसकी स्थिति बनी। उसके रोम रोम से चिंगारियां छूटने लगी। यह देख कर्ण ने अर्जुन पर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया तो अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र से उसको दबोच दिया। उसके बाद कर्ण को लक्ष्य करके आग्नेयास्त्र छोड़ा, उसके विपरीत उसने वारुणास्त्र छोड़ा। ऐसे एक दूसरे पर विपरीत अस्त्र छोड़ते गए। इसी समय कृष्ण ने कहा, कर्ण जब तक रथ पर नहीं चढ़ अर्जुन यह कर्ण जब तक रथ पर नहीं चढ़ सकता तब तक इसका मस्तक काट डालो, अब विलंब मत करो, अब कर्ण के मरने का समय आ गया है। तब अर्जुन ने कर्ण को मारने के लिए आंजलिक नाम का बाण निकालकर उसको अपने धनुष के प्रत्यंचा पर चढ़ाकर जिसकी लंबाई ढाई हाथ की थी उसमें छह पर लगे हुए थे, बहुत शीघ्रता से उसको अपने कान तक खींच करके कालाग्नि के समान घोर उस और सुदर्शन चक्र के समान तीक्ष्ण तथा पिनाक के समान भयंकर उस बाण को चढ़ा करके कहने लगा, हे केशव, यदि मैंने तप किया हो, गुरुजनों को सेवा से प्रसन्न किया हो, यज्ञ किया हो, हितेशी मित्रों की बात ध्यान देकर सुनी हो, तो इन सत्य के प्रभाव से यह बाण मेरे प्रचंड शत्रु कर्ण का नाश कर डाले। ऐसा कहकर उन्होंने वो भयानक बाण कर्ण का वध करने के उद्देश्य से उसकी ओर छोड़ दिया और उसके हाथ से छूटते ही वह सूर्य के समान तेजस्वी बाण सब दिशाओं में आकाश में प्रकाश फैलाता आगे तीव्र गति से बढ़ा और दिन के तीसरे पहर अर्जुन के उस बाण ने कर्ण का मस्तक काट डाला। अंजलि से कटा हुआ वो मस्तक पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसके बाद उसका धड़ भी खून की धारा में बहता हुआ धराशायी हो गया। उस समय कर्ण के शरीर से एक दिव्य तेज निकला, आकाश में फैला, ऊपर गया और सूर्य मंडल में जाकर विलीन हो गया। उस अद्भुत दृश्य को देखकर सब लोगों ने बड़ा आश्चर्य किया। अर्जुन ने कर्ण को मार गिराया। यदि एक पांडव पक्ष के योद्धा जोर जोर से शंख बजाने लगे। श्री कृष्ण, अर्जुन, नकुल, सहदेव इन सब ने बड़ा हर्ष किया। सोमकों ने सेना सहित सिंहनाद किया। दूसरे योद्धाओं ने अत्यंत प्रसन्न होकर बाजा बजाना चालू किया। कितने ही राजा लोग दौड़ दौड़ करके आकर अर्जुन से गले मिलने लगे। कितने ही एक दूसरे को गले लगाकर नाचने लगे। इधर कर्ण के शरीर को खून से लथपथ हो पृथ्वी पर पड़ा देखकर मद्रराज शल्य उस टूटी हुई ध्वजा वाले रथ के द्वारा ही वहां से भाग गए। कर्ण की मृत्यु देख कौरव पक्ष के सभी योद्धा भयभीत होकर सब दिशाओं में भागने लगे। उस समय दुर्योधन के आंखों से आंसू थम नहीं रहे थे। लंबी लंबी श्वास लेकर वह बहुत दुखी हो गया। दोनों पक्ष के योद्धा कर्ण की लाश देखने के लिए उसके चारों तरफ खड़े हो गए। कोई प्रसन्न था, कोई भयभीत था, किसी के चेहरे पर विषाद की छाया थी तो कोई आश्चर्य में डूबा हुआ है। सारांश यह है कि जिसकी जैसी प्रकृति थी वे उसी प्रकार हर्ष शोक कर रहे थे। कर्ण के मरने पर भीमसेन ने दुशासन के समय से कम सिंहनाद नहीं किया, खूब अपना विकराल रूप बनाकर पृथ्वी और आकाश को कंपा दिया और धृतराष्ट्र के पुत्रों को डराते हुए ताल ठोक कर कूदने और नाचने लगा। भीमसेन, संजय, श्रृंजय, सोमक, दूसरे क्षत्रिय अत्यंत हर्ष में भरकर छाती से लगाने लगे और भीमसेन भी उन लोगों को खूब आनंदित कर रहा था। इधर मद्रराज शल्य, उनका चित्त ठिकाने नहीं था, दुर्योधन के पास पहुंचकर आंसू बहाते हुए बड़े दुख के साथ बोले, राजन तुम्हारी सेना के हाथी घोड़े रथ योद्धा सब नष्ट हो गए, मानो यमराज का आधिपत्य हो गया। आज कर्ण और अर्जुन में जैसा युद्ध हुआ वैसा पहले कभी नहीं हुआ। कर्ण ने चढ़ाई करके कृष्ण, अर्जुन और अन्य शत्रुओं को प्राय काबू में कर लिया था, किंतु फल कुछ नहीं हुआ। निश्चय ही ये भाग्य पांडवों के अधीन है, पांडवों के कहे के चलता है, वह उनकी रक्षा करता है, हमारा नाश करता है। यही कारण है कि तुम्हारे अर्थ की सिद्धि के लिए प्रयत्न करने वाले सभी वीर शत्रुओं के हाथ से बलपूर्वक मारे गए। तुम्हारी सेना के प्रमुख योद्धा इंद्र, यम और कुबेर के समान प्रभावशाली थे, परंतु दुर्योधन उनमें पराक्रम, शौर्य, बल, तेज तथा और भी बहुत गुण होते हुए भी पांडवों के समान वे पांडवों के समान नहीं थे। पांडव योद्धाओं ने रण में मार करके अपने आप को अवध्य घोषित कर दिया। ये सब प्रारब्ध का खेल है, भाग्य का खेल है, शोक मत करो। मद्रराज की बातें सुनकर मनी मन में अपने अन्यायों का स्मरण किया दुर्योधन ने। विचार किया कि यदि मैं बुराई का कहीं पर भी अंत कर लेता तो आज ये दिन देखना नहीं पड़ता। बहुत दुख से विचित हुआ, लंबी लंबी सांस लेने लगा। संजय कहते हैं, महाराज उस समय कौरव सैनिक भीमसेन के भय से बहुत व्याकुल हो गए। उनकी ये अवस्था देखकर दुर्योधन हाहाकार करके अपने सारथी से बोला, तुम धीरे धीरे घोड़े को आगे बढ़ाओ, जब हाथ में धनुष लेकर मैं अपनी पूर्ण सेना के पीछे खड़ा रहूंगा उस समय अर्जुन मुझे परास्त नहीं कर सकते। यदि वे मुझसे लड़ने आएंगे तो निस्संदेह उन्हें मार डालूंगा। आज मैं अर्जुन, कृष्ण और घमंडी भीमसेन को बचे कुचे अन्य शत्रुओं के साथ मौत के घाट उतारकर कर्ण के ऋण से मुक्त हो जाऊंगा। ऐसी बात कहकर वह चतुरंगिणी सेना के बीच में गया। इधर भीमसेन और धृष्टद्युम्न ने अपनी सेना को संभाल रखा था। अर्जुन ने धावा बोल ही दिया, नकुल, सहदेव, सात्यकी ये सब मिलकर संहार कर रहे थे। शकुनी से बार बार सहदेव कहते, मामा जी आपके पासे कहां गए? शकुनी के बहुत से घुड़सवार मारे जा रहे थे, 25,000 योद्धाओं के साथ ये सब मारे गए। दुर्योधन ने जब सेना पर दृष्टिपात किया तो बड़े उत्साह को बढ़ाते हुए कहा, योद्धाओं मैं जानता हूं तुम भय से कांप रहे हो, परंतु मेरे देखने में कोई भी देश नहीं है जहां तुम लोग भागकर जाओ और पांडवों से छिप जाओ, इससे तो अच्छा यही है युद्ध भूमि में मर जाओ। युद्ध भूमि में मरने से तुम्हारा लोक परलोक सब सुधर जाएगा। देखो कृष्ण और अर्जुन खूब घायल हो चुके हैं, अब इनको मारना बड़ा सुगम हो गया है, हम लोगों की जीत निश्चित है। जितने क्षत्रिय यहां उपस्थित हैं सब ध्यान लेकर सुने, जब मौत सूरवीर और कायर दोनों को मारती है तो मेरे जैसा क्षत्रिय व्रत का पालन करने वाला ऐसा कौन होगा जो युद्ध नहीं करेगा? हमारा शत्रु भीमसेन क्रोध में भरा हुआ है, यदि भागोगे तो उसके वश में पड़कर तुम्हारे प्राण ले लेगा, इसलिए बाप दादों का आचरण करते हुए क्षत्रिय धर्म का पालन करो। हे धृतराष्ट्र महाराज, आपका पुत्र तो ये व्याख्यान दे रहा है, परंतु आपकी सेना में कोई भी सैनिक ऐसा नहीं जो उसको ध्यान से सुने, सबको अपने जान के लाले पड़े हुए हैं, सब इधर उधर भाग रहे हैं। महाराज शल्य ने दुर्योधन से कहा, महाराज जरा इस रणभूमि की ओर दृष्टि डालो दुर्योधन, कितने मनुष्य, घोड़े, लाशें मर गई हैं, कितने सूर्योदय के आभूषण, मनोरम सुख, मनोरम राजधानियां छोड़ छोड़ करके यहां आकर मरे हैं। हे सूर्यदेव अस्ताचल को, अब ये सूर्यदेव अस्ताचल को जा रहे हैं, तुम भी छावनी में लौटो और सबको छावनी के अंदर जाने दो। राजा शल्य इतना कहकर चुप हो गए। उनका चित्त शोक से व्याकुल हो रहा था। दुर्योधन बड़ी दयनीय अवस्था में आर्त होकर के हा करण पुकार रहा था। बार बार कह रहा था कि मैं भीष्म के बल पर नहीं, द्रोण के बल पर नहीं, केवल एक तुम्हारे बल पर मैंने रण प्रारंभ किया था, तुम हम सबको छोड़कर चले गए। अश्वत्थामा और दूसरे राजा लोग आकर उसे बार बार धैर्य दिलाते थे, रणभूमि को देखते हुए छावनी की ओर लौट जाते थे और हा करण इस प्रकार से योद्धा लोग बोलते थे। योद्धाओं ने कहा, उत्तम याचकों के मांगने पर जिसने सदा यही कहा कि मैं दूंगा, मेरे पास नहीं है, ऐसी बात कभी भी मुंह न निकालने वाला कर्ण जैसा सत्पुरुष आज अर्जुन के हाथ से मारा गया, जिसका सारा धन ब्राह्मणों के अधीन, ब्राह्मणों के लिए अपना प्राण, ब्राह्मणों के लिए कितना बड़ा दानी, वही कर्ण आपके पुत्रों की विजय की आशा, भलाई और रक्षा करता हुआ स्वर्ग में चला गया। कर्ण के मर जाने पर जब सूर्य अस्त हो गया तो मंगल बुध वक्र गति से उदित हुए, पृथ्वी में गड़गड़ाहट हुई, चारों दिशाओं में आग लगी, बृहस्पति रोहिणी को घेरकर चंद्रमा तथा सूर्य के समान तेजस्वी रूप हो गए। इस प्रकार कर्ण के मारने के पश्चात प्रसन्नता से कृष्ण और अर्जुन सोने की जाली से मंडे हुए श्वेत शंख, पांचजन्य और देवदत्त को बजाने लगे। सारी दिशाएं गुंजायमान हो गईं। सब लोगों ने कृष्ण और अर्जुन का बड़ा सम्मान किया। देवता, गंधर्व, मनुष्य, चारण, महर्षि, यज्ञ, यक्ष और नागों ने बड़ा विजय उत्सव मनाया। सभी ने उनकी बड़ी प्रशंसा की। इधर कृष्ण ने अर्जुन को छाती से लगाकर कहा, पार्थ, आज तुमने कर्ण को मार करके संसार के अंदर वृत्रासुर वध की जगह कर्ण वध को प्रसिद्ध कर दिया। धर्मराज से शुभ समाचार जाकर कौन कहेगा? आज तुम धर्मराज से उर्ण हो गए। तुम में और कर्ण में जब संग्राम छिड़ा हुआ था वो देखने के लिए आए थे, परंतु ज्यादा घायल थे इसलिए वापिस चले गए। हमें उनके पास जाना चाहिए। कृष्ण और अर्जुन बड़े उत्साह के साथ युधिष्ठिर महाराज के पास गए। उस समय युधिष्ठिर महाराज सोने के पलंग पर लेटे हुए थे, उनको नींद आ रही थी, परंतु कृष्ण और अर्जुन ने जाकर उनके चरणों का स्पर्श किया और उन्होंने आंख खोली। कृष्ण और अर्जुन का चमकता हुआ चेहरा देखा, मुस्कुराकर बोले, क्या बात है कृष्ण? अर्जुन, क्या बात है, बड़े प्रसन्न हो, क्या कोई समाचार है, सुनाओ। इसके बाद भगवान मुस्कुराते हुए बोले, महाराज, बड़े सौभाग्य की बात है कि आप, भीमसेन, अर्जुन तथा नकुल, सहदेव कुशल हैं। महारथी कर्ण मारा गया है और आपकी विजय तथा अभिवृद्धि हो रही है। आज सूत पुत्र के सारे शरीर में बाण चुभे हुए, वह भूतल पर पड़ा हुआ रणभूमि में धूल चाट रहा है। ऐसी अवस्था में आप रथ पर बैठकर एक बार अपने शत्रु को चलकर देखिए। अब आप पृथ्वी का अकंटक राज्य भोगिए। कृष्ण के वचन सुनकर धर्मराज बड़े प्रसन्न हुए। देवकी नंदन, ये बड़े आनंद की बात है, जब तुम्हारे जैसे सारथी हो, हम सब की बागडोर तुम्हारे हाथ में हो, तब फिर हमारा पराभव हो भी कैसे सकता है? ये सब आपकी बुद्धि का प्रसाद है। युधिष्ठिर ने कृष्ण की दाई बांह पकड़ ली, दाई बांह, फिर दोनों से कहा, नारद जी ने मुझे बताया था कि अर्जुन और कृष्ण तो नर नारायण ऋषि हैं। व्यास जी ने भी मुझे कई बार इस चर्चा के लिए कहा था। बड़ा अच्छा हुआ आपने कर्ण को मार करके एक धर्म का मार्ग खोल दिया। यूं कहकर राजा युधिष्ठिर ने सोने से सजाए हुए रथ पर बैठकर कृष्ण और अर्जुन को साथ में लेकर रणभूमि की ओर चले और वहां देखा कि कर्ण के शरीर में सैकड़ों बाण छिदे हुए हैं, मस्तक उसका कटा हुआ है, उसके पास सुगंधित तेल से हजारों सोने के दीपक जलाए हुए हैं और उस प्रकाश में कर्ण के पक्ष के सैनिक और पांडु पक्ष के सैनिक सब वहां उपस्थित हैं। कर्ण को इस प्रकार मरा हुआ देखकर कृष्ण, अर्जुन और युधिष्ठिर महाराज ये सब सबके बीच में खड़े होकर बड़े गौर से देख रहे हैं। वहां से रवाना होते हुए कहने लगे, गोविंद आप वीर और विद्वान होने के साथ हमारे स्वामी भी हैं, हम लोग आपसे बड़े सुरक्षित हैं। अब एक दुर्योधन बचा है, वास्तव में दुर्योधन का परम आधार कर्ण ही था और अब ये दुर्योधन ज्यादा दिन जीवित नहीं रह सकता है। युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण और अर्जुन की बड़ी प्रशंसा की और सब अपने शिविर में आ गए। अब वैशंपायन जी कहते हैं, जनमेजय, संजय जब ये अप्रिय समाचार धृतराष्ट्र को सुना रहे थे, धृतराष्ट्र अपने आसन से चक्कर खा करके जमीन पर गिर गए। कोई सुदबुद्ध नहीं रही, दूर तक विचार करने वाली उनकी रानी गांधारी देवी आई, वो भी पछाड़ खाकर रोने लगी। फिर उसको संभाला गया, राजा को संजय ने संभाला और धृतराष्ट्र को उन्होंने समझाया, अनेक प्रकार की विवेक की बातें बताई और वे चुपचाप बैठ गए। इस प्रकार से ये कर्ण पर्व है। इस कर्ण पर्व को जो सुनता है, जो सुनाता है, जो पढ़ता है, जो सुनता है, उसको सब प्रकार का सुख मिलता है, सारे वेदों का पढ़ने का लाभ मिलता है। जो व्यक्ति इस कर्ण पर्व को सुनते हैं उनको भगवान विष्णु, ब्रह्मा, शंकर जी सब बड़े प्रसन्न होकर उनकी मन की इच्छाएं पूरी करते हैं। लगातार एक बरस तक बछड़ों सहित कपिला गऊ दान देने का जो फल मिलता है वो कर्ण पर्व के एक बार सुनने मात्र से मिल जाता है। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। श्रीमन्नारायण नारायण 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 नारायण
नारायण नारायण नारायण
श्रीमन्नारायण नारायण नारायण।